जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी की दया से हम लोग बड़ी ही उत्कट जगह पर आए हैं। ये जगह का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर में बहुत अद्भुत और उत्कट लीला हुई है। रास में जब एक बार श्री कृष्ण भगवान देर से आते हैं तो राधा रानी रूठ जाती है और रूठ कर वो यमुना पार जाती है। और यमुना पार जाकर यहाँ आकर जब रोती है तो उनके विरह में और क्रोध में जो मान में जो अश्रु निकले हैं उनसे ये सरोवर बना हुआ है। वैसे राधा रानी का मान जो है वो हमारे जैसा लोगों का क्रोध जैसा नहीं है। उनका जो मान है वो महाभाव में जो आठ प्रेम के प्रकार होते हैं उसमें उसका एक अंग है मान। और मान केवल श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। वो अगर उठ भी जाती हैं तो उसका उद्देश्य भी उनको प्रसन्न करना होता है, उस प्रेम को और गहरा करने के लिए होता है। तो ऐसे कई कारण हैं उनके रूठने के। जैसे एक बार कृष्ण ने उनका श्रृंगार किया और राधा रानी ने कृष्ण का श्रृंगार किया, कृष्ण ने उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार पूर्ण होने के बाद में राधा रानी ने कहा कि हमारे सौंदर्य का वर्णन करो आप। तो कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश की कि कैसे उत्तम वर्णन किया जाए, लेकिन राधा रानी के सौंदर्य को देखकर उनको अच्छी उपमा नहीं मिल रही थी। प्रकृति में कोई सुंदर तुलना नहीं मिल रही थी कि तुलना की जाए उससे। तब उन्होंने आकाश में देखा तो चंद्रमा का दर्शन हुआ तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपका जो मुख कमल है वो चंद्रमा की तरह है। तो अगर किसी को कहा जाए कि आपके मुख कमल चंद्रमा की तरह है तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन राधा रानी रूठ गई, नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आप चंद्र के साथ में हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र जो है वो उसमें दाग होते हैं और हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है। हमारा सौंदर्य क्या कहते हैं उसको, बिना किसी दाग के दोष के हैं, स्वच्छ हमारा सौंदर्य है। फिर चंद्रमा जो है उसको ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं है। चंद्रमा 15 दिन में बढ़ती है, 15 दिन में छोटी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कभी अमावस्या के दिन दर्शन नहीं होता है। हमारे सौंदर्य में कोई ज्वार भाटा नहीं है, बढ़ोतरी और कम नहीं है, जब होता है जब बढ़ते ही रहता है हमेशा। चंद्रमा जो है वो पर प्रकाशित है और हमारा सौंदर्य जो है वो स्वयं तेज से प्रकाशित है। हम किसी के भी तेज पर निर्भर नहीं है और ये सब कुछ भी मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन हमारी जो प्रतिस्पर्धी गोपी हैं इसका नाम चंद्रावली है, राइट विंग और लेफ्ट विंग, उसको उनकी जो विरोधी ग्रुप है उसका नेतृत्व जो है वो चंद्रावली के पास है। उस चंद्रावली के आधे नाम में चंद्र आता है। तो कैसे आप हमारे सौंदर्य की तुलना चंद्र से कर सकते हैं, इसका आधा नाम हमारे अपोजिट गोपी का है। ऐसे कहकर वो रूठ गई और फिर वो मान मंदिर मान गढ़ पे चढ़ गई। फिर कई और कई कारण जो पता है वो बता रहा हूँ आपको। जैसे राधा रानी ने कृष्ण को मुरली सिखाई है, यमुना किनारे बैठकर मुरली का पाठ पढ़ाया है, तो दुनिया भर में तो श्री कृष्ण को मुरली मनोहर के रूप में जानते हैं, बंशीधर के रूप में जानते हैं। जब भी मुरली की बात आती है तो कृष्ण की याद आती है। लेकिन कृष्ण को मुरली सिखाया किसने? राधा रानी ने। कृष्ण को सब लोग नटराज के रूप में जानते हैं, सर्वोत्कृष्ट नृत्य करने वाले, लेकिन उनको नृत्य सिखाया किसने? वो राधा रानी ने सिखाया। तो वो जब नृत्य सिखाती है ना, तो कृष्ण बड़े चालाक हैं। वो क्या करते हैं, उनका संग ज़्यादा मिलना चाहिए और उनका क्लास लंबा होना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, जानबूझकर रॉन्ग स्टेप डालते हैं। अरे वो तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे तो 64 दिन में 64 कलाओं को पारंगत होकर लौटे। वो उनको कई 12-12 साल लगते विद्यार्थियों को गुरुकुल में। तो श्री कृष्ण जब सांदीपनि आश्रम में गए तो 64 दिन में 64 कलाओं को बेस्ट तरीके से उन्होंने आत्मसात किया। तो उनके लिए ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर राधा रानी के कहने पर भी गलत कदम डाल रहे हैं। तो राधा रानी बड़ी भोली है, उसको बार बार सिखाती है, बार बार सिखाती है, अरे ऐसे नहीं ऐसे, अरे ऐसे नहीं ऐसे, फिर भी गलत कदम डालते हैं। बहुत देर के बाद में समझ में आता है कि ये नाटक कर रही है, तो उनको गुस्सा आता है, फिर वो चले जाती है नाराज होकर। ऐसे कई प्रकार के कारण हैं जिससे राधा रानी रूठ जाती है। लेकिन ये रूठना जो है वो स्वार्थ पर आधारित नहीं है, स्वार्थ पर निहित नहीं है। हमारा जो रूठना होता है वो स्वार्थ के लिए है। जब हमारे काम वासना पूर्ण नहीं होती है, हमारी दुनियादारी की इच्छा नहीं पूर्ण होती, तो क्रोध आता है। लेकिन राधा रानी को क्रोध नहीं कहते, उनके क्रोध को मान कहते हैं। तो पवित्र स्वरूप है उसका, रूठने की भावना का सबसे पवित्र प्रकट्य है वो। तो आप सोच सकते हैं कि कारण तो कृष्ण भगवान देर से आए ये है, लेकिन यहाँ कृष्ण के विरह में आकर राधा रानी रोती है और अश्रुओं से उनके ये कुंड बना है। बड़ी उत्कट भावना प्रकट है यहाँ पर, और इतनी शक्ति है इस कुंड में। उसको बताने के पहले एक बात बताते हैं आपको कि हम सब लोग रोते हैं, है ना। हम लोग भी उधर प्रेम सरोवर में गए थे, उधर भी अश्रुओं की बातें चल रही थी। सब लोग कभी ना कभी रोते हैं, लेकिन हमारा जो रोना होता है ना, वो केवल अपने सुख और अपने दुख और अपने स्वार्थ के लिए होता है। जब हमारा कुछ बुरा हुआ तो हम रोते हैं, हमारा कुछ नुकसान हुआ तो हम रोते हैं, हमें कुछ चाहिए था वो नहीं मिला तो रोते हैं, हमारा जो प्रिय व्यक्ति खो गई तो रोते हैं, कुछ सोने की चेन खो गई तो रोते हैं, कुछ मूल्यवान वस्तु खो गई तो हम रोते हैं। लेकिन इनका जो रोना है, गोपियों का, राधा रानी का, यशोदा मई का, ये सब कृष्ण के लिए है। तो अश्रु एक बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु है। तो हमारे लिए ये संदेश है कि अपने मूल्यवान अश्रुओं को किसी फालतू चीज़ के लिए मत बहाना, जो दुनियादारी की चीज़ हो, समय के साथ नष्ट होने वाली वस्तु हो, काल से प्रभावित हो, काल के साथ जो स्वतः नष्ट हो जाएगी, यानी टेम्पररी है, अशाश्वत, ऐसे अशाश्वत चीज़ों के लिए, पाने के लिए मत रोना और वो खोने पर भी मत रोना। दो तरह के लिए हम रोते ना, आकांक्षा और शोक। किसी चीज़ की आकांक्षा है कि वो चाहिए मुझे, इसलिए हम रो रहे हैं। और कुछ ही हमारे पास मूल्यवान चीज़ थी हमारे तरफ से, जो हमारी बुद्धि से लगता है कि मूल्यवान थी, और वो खो गई तो फिर हम रोते हैं, है ना। और भगवान भक्त की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। मेरा भक्त वही है जो ब्रह्मभूत यानी मुझे पूर्णता मेरा साक्षात्कार कर चुका है, मेरी अनुभूति कर चुका है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। और क्या कि उसका क्वालिफिकेशन है, न शोचति, कभी कोई चीज़ खोने पर उसको रोना नहीं आता है, और न कांक्षति, कुछ चीज़ है नहीं इसलिए वो रोता नहीं है। हम केवल दो बात के लिए रोते हैं, कुछ चाहिए या कुछ खो गया है। और यहाँ पर संदेश मिलता है कि कुछ चाहिए तो भी रोना नहीं, कुछ खो गया तो भी रोना नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जो मिलने वाला है और जो मिलकर खो गया है, दोनों अशाश्वत है। और जो आने वाला है उससे भी शाश्वत आनंद मिलने वाला नहीं है, और जो था और जो खो गया उससे भी शाश्वत आनंद नहीं मिलने वाला है। शाश्वत आनंद जो आत्मा को चाहिए, जो आत्मा की जरूरत है, जो आत्मा का स्वभाव स्वभाव है, वो शाश्वत आनंद केवल कृष्ण और उनके नाम में ही है, उनकी सेवा में ही है और उनके संबंधित चीज़ों में है। तो अगर कृष्ण नहीं मिले हैं, उनके आकांक्षा आपको है, तो आप रो सकते हो, तो वो जो आंसू है वो आपके हृदय को और शुद्ध करेंगे। लेकिन भौतिक दुनिया की वस्तु नहीं मिली इसलिए आप रोएंगे, तो आपकी आत्मा को और वो आसक्त बनाएगी, और कोई चीज़ खो गई इसलिए रोएंगे तो और आपकी आत्मा को वो फंसा के रखेगी तीन गुणों के चक्र में, दुनियादारी में, जन्म मृत्यु के श्रृंखला में फंसाए रखेगी। तो ऐसे आंसू बहाना जिससे आप जीवन के बंधन से मुक्त हो जाएं, और ऐसे आंसू नहीं बहाना जो जीवन के बंधन में आपको और गहराई से बांध लें। डू नॉट शेड योर टीयर्स टू गेट मोर एंटेंगल्ड इन द वर्ल्डली अफेयर्स, शेड योर टीयर्स टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली एंटेंगलमेंट। तो यहाँ पर आके ये सीखना है कि रोना है अगर तो कृष्ण के लिए रोना है, कृष्ण नहीं मिले इसलिए रो सकते हैं, कृष्ण कहाँ है ये ढूंढे ढूंढे रो सकते हैं। हमारे गोस्वामी लोग जो थे, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद शूनो कुतः, कालिंदी वन्ने कुतः, अब कहाँ हो कृष्ण, सब जगह ढूंढ ढूंढ के रो रहे हैं। गोपियाँ भी जब कृष्ण को रास में खो जाती हैं, खो देती हैं, तो लताओं को, पताओं को, वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को, सभी स्थानीय देवताओं को, सबको पुकार रही है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कुथा है कृष्ण, कुथा है कृष्ण। तो कृष्ण की याद में रो सकते हैं, कृष्ण के विरह में रो सकते हैं, हृदय को शुद्ध करेगा और भौतिक कलमश से मुक्त कर देगा। तो राधा रानी से आप प्रार्थना करो कि हमारा एक भी बूंद आंसू जो है किसी भी निरर्थक वस्तु के लिए न बहे। और हमारे नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए अगर किसी की आंख के कोने में एक बूंद की अश्रु दिखती है मुझे, तो मैं कृष्ण भक्ति से उसको मालामाल कर दूंगा। हमारे नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं, वो बलराम स्वयं हैं, वो बताते हैं कि हम अगर रोना ही है, अगर अश्रु बहना ही है, तो फिर कृष्ण के लिए बहे। और ये जो राधा रानी के अश्रुओं से इतना विशाल कुंड यहाँ पर उत्पन्न हो गया, इसकी महिमा देखिए आप। रासलीला जब हो रही थी, शुरुआत होने वाली थी, तब शंकर जी और एक आसुरी मुनि नाम के उनके तपस्वी जीव हैं, वो शंकर और कैलाश से उतर के यहाँ पर आते हैं रास में दर्शन करने के लिए। तो उनको गोपियाँ रोकती हैं और कहते हैं कि आप पुरुषों को यहाँ प्रवेश नहीं है, केवल एक ही यहाँ पर पुरुष है, वो श्री कृष्ण हैं, बाकी सब कन्याएँ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको देखना है, जाना है अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपको स्त्री बनना होगा। उन्होंने उपाय पूछा ना कि जाना है मुझे अंदर, तो उन्होंने कहा कि केवल स्त्री शरीर में आप जा सकते हैं। तो शंकर जी का महानता देखिए, शंकर जी के मन में एक भी विचार ऐसा नहीं आया कि मैं स्त्री क्यों बनूं, क्या मैं पुरुष के रूप में जा सकता हूं, क्या कुछ और उपाय है जिससे पुरुष भी रहूं और दर्शन भी करूं। उन्होंने केवल उपाय पूछा और उपाय कैसे करना है वो पूछा, मैं तैयार हूं तत्क्षण। ये मन में विचार नहीं आया कि पार्वती क्या बोलेंगी, हमारे पति तो कन्या हो गए, पति नहीं रहे अभी, मेरे शिष्य लोग क्या कहेंगे, मेरे अनुयायी लोग क्या कहेंगे, मेरे विरक्त विरक्त संत जो मेरी पूजन करते हैं वो क्या कहेंगे, कोई प्रश्न मन में नहीं आया, कोई किंतु परंतु अहम है ही नहीं मन में। केवल एक ही प्रश्न पूछा, कैसे कन्या बनना है, बस उतना बताओ। तो ललिता विशाखा आदि गोपियों ने कहा कि आप मान सरोवर में जमुना पार जाके स्नान करके आओगे तो आपको गोपी शरीर प्राप्त होगा। वो इतने आतुर थे दर्शन करने के लिए भगवान का, तो वो ऐसे हवा की गति से जन्मा पार करके मानसरोवर आए। इसका मतलब मानसरोवर रासलीला प्रारंभ होने के पहले ही प्रकट हुआ था, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही शिवजी ने यहाँ पर डुबकी लगाई, कैसी लगाई, दो भावना थी उसके अंदर, आतुरता थी बहुत, उत्सुकता थी, हाँ तीव्र उत्सुकता थी, वेरी सीवियर इंटेंस ईगरनेस, वो उसकी कीमत है। हाँ हम लोग भी स्नान करते हैं, हमारा कोई गोपी का शरीर प्राप्त नहीं होता है, 50 बार स्नान करेंगे तो वैसे रहते हैं हम, क्योंकि वो भाव नहीं है जो शिव जी के अंदर है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति की कीमत जो है लौल्य है, लौल्य यानी कि लालसा, जब तीव्र लालसा उत्पन्न होती है ना तो भक्ति प्राप्त होती है। तो शिव जी उस तीव्र लालसा से आए, उन्होंने यहाँ पर छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो तुरंत वो गोपी शरीर को प्राप्त किया उन्होंने। वैसे ही भाग के गए वापस। वो ऐसा आईने में देखने रहे कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक तो लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, गोपी बनकर कैसे लग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि खुद पर ध्यान नहीं है, श्री कृष्ण पर ध्यान है। जैसे ही पता चला कि श्री शरीर प्राप्त हो गया, वह तुरंत भागे रासमंडल के दरवाजे पर, और वहाँ पर वही ललिता विशाखा खड़ी थी। वो हंसने लगी जोर से। क्यों हंसने लगी? अरे शंकर भगवान गोपी बन गए, जो सांप थे उनके पर वो सांप ही रह गए ना, है ना। थोड़ी वो सांप वो भाव में थे कि हमको भी दर्शन करना है, वो तो सांप उनके हाथ में, पैर में, सर में, गले में, सब जगह लटके हुए हैं। तो कोई सुंदर स्त्री है और वो गले में हार, सर में, हाथ में, सब जगह सांप लटके हुए हैं, तो कैसे लगेगी वो? तो ये देखकर वो हंसे। मतलब द द हंसना जो था वो बहुत सराहने में था, मतलब इट वॉज एन अप्रिशिएटिव, वो अप्रिशिएटिव था कि भाई कितना उत्सुकता है देखे इनके अंदर। ये भान भी नहीं उनको कि भाई मेरे ऊपर सांप है और वो कैसे लगते होंगे जब मैं कन्या बन के आ रही हूँ, गोपी बन के आ रही हूँ, उसका भान भी नहीं है, होश ही नहीं है। इतना स्वत्व जो है ना वो छोड़ दिया है, और जो ध्यान भगवान के ऊपर है, हमारा सारा ध्यान खुद के ऊपर होता है। और खुद को कुछ भी हुआ है तो हमको दुख या सुख होता है, इनका सारा ध्यान खुद के ऊपर से निकल कर श्री कृष्ण और राधा रानी के ऊपर है। तो इनका भाव देखकर बड़ी प्रसन्न हुई ललिता विशाखा गोपियाँ, उन्होंने अपने हाथ से शंकर जी भगवान का श्रृंगार किया। कन्या बनकर तो आए थे ना वो, लेकिन बहुत गोपी का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया, और सुंदर श्रृंगार करके उनके हाथ में चामर दिया और उनका हाथ पकड़ के बिल्कुल रास मंडल के दरवाजे से प्रवेश करते हुए रास मंडल के मध्य में गए, जहाँ पर रत्न सिंहासन पर राधा रानी और श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी विराजमान थी। पूरा श्रृंगार किए हुए हैं, बहुत सुंदर रास मंडल को सजाया हुआ है, रास का भी आरंभ होने वाला है, आरंभ के पद गाए जा रहे हैं, उनको आरोगा जा रहा है, उनके लिए कुछ परोसा जा रहा है। ऐसे सुंदर वातावरण में उनको मध्य में ले गए, तो बहुत दुर्लभ जगह, यहाँ पर साधारण जीव प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन शिवजी का ऐसा भाव है कि गोपियाँ भी जो उनकी राधा रानी की सेविका हैं वो प्रभावित हो गई, उनको ले गए, उनके हाथ में चामर पकड़ाया, फिर उस गोपी ने चामर सेवा किया राधा और कृष्ण का। अभी क्या नाम है उनका? गोपेश्वर महादेव, जो गोपी बने हुए अभी। बहुत देर तक उन्होंने चामर सेवा किया राधा रानी का, श्री कृष्ण भगवान का, और फिर उनको हाथ पकड़ के फिर वापस ले आए और खूब दर्शन किया उन्होंने। हमारे एक आचार्य हैं ठाकुर भक्ति विनोद, उन्होंने सुंदर भजन लिखा है, हाँ, चमर ढुला भो कबे हेरी बो मुख चंद्र। वो चमर कैसे होता है ना, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, बीच में क्या करते हैं, देखते हैं, जिनके लिए चमर सेवा कर रहे हैं उनका दर्शन करते हैं। चमर ढुला भो कबे हेरी बो मुख चंद्र, मुख चंद्र को हेरी हेरी बो यानी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं प्रेम से। तो पूरा दिल भर के अवलोकन किया, चामर सेवा किया प्रेम से, फिर उनको बाहर लेके आए और गोपियों ने कहा कि अभी आप यहाँ बैठो और रासमंडल का रक्षण करो। तो वहीं पर गोपेश्वर महादेव यानी गोपी बने हुए जो शंकर भगवान हैं वो गोपी के रूप में वहीं विराजमान हो गए और आज तक वहीं बैठे हुए हैं। उनका नाम गोपेश्वर महादेव है। सवेरे वो लिंग के रूप में होते हैं, शाम के समय जब रास का समय आरम्भ होता है तो उनका सुंदर गोपी श्रृंगार करते हैं, सब लोग गोपेश्वर का दर्शन करते हैं। तो चार महादेव जो हैं ब्रज में, उसमें से एक प्रधान महादेव हैं गोपेश्वर महादेव, जो वृंदावन में विराजते हैं, भूतेश्वर महादेव मथुरा में विराजते हैं, चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में विराजते हैं, और कामेश्वर महादेव कामावन में विराजते हैं, आशेश्वर महादेव नंदीश्वर महादेव नंदगांव में विराजते हैं। सब जगह इनका प्रवेश है और सब जगह पर ये धाम की रक्षा करते हैं, धाम के संरक्षक के रूप में उनको और उनकी पत्नी को सब जगह प्रवेश है। तो कनेक्शन क्या था कि इस जल में इतनी शक्ति है कि शंकर जैसे महान विभूति को गोपी शरीर प्राप्त करा दिया। भाव तो शंकर जी का है ही, लेकिन जल में भी कोई शक्ति है ना। ऐसे तो नहीं कहा कि वे दक्षिण दिशा में जाओ, वो कुंड में स्नान करो। उनको आदेश दिया गया था कि आप मानसरोवर में आओ, यहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण के विरह में बहे हुए अश्रु हैं, उसका स्पर्श होते ही ये परिवर्तन हो जाता है। तो हम भी प्रार्थना करें यहाँ पर बैठकर, हम भी वैसे कह सकते हैं हम पत्थर दिल हैं हमारे अंदर वो भाव नहीं है, भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मांग सकते हैं ज़रूर, एक भिक्षुक बन के नम्र बनकर मांग सकते हैं कि हमारी बहुत पतित स्थिति है, हम ऐसा दिव्य परिवर्तन जो है वो चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा परिवर्तन हो, हम भी अपने अहम को छोड़ने के लिए उत्सुक हों। कौन सा अहम था कि मैं पुरुष हूँ, महादेव हूँ, मैं कैसे गोपी बन सकता हूँ, ये उन्होंने नहीं सोचा। इतने बड़े पद पर होने पर भी उन्होंने तुरंत अपने विचार को भी त्याग कर दिया, तुरंत, कोई अवसर नहीं लगा उनको सोचने के लिए, हाँ ठीक है 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ, सोच के बताता हूँ क्या बनूँ कि नहीं बनूँ, प्रवेश चाहिए कि नहीं चाहिए, कि छोड़ ही दूँ उसको। हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल है क्या, छोड़ दो अभी, नहीं चाहिए हमको, मिल रहा है आसानी तो ठीक है, ज़्यादा कष्ट नहीं करेंगे, ऐसा हमारा विचार होता है। एनीथिंग डिफिकल्ट से ओके फॉरगेट इट, वी डोंट वॉन्ट। लेकिन महादेव जी के अंदर, महादेव होने पर भी कोई अहम नहीं है, इसका प्रमाण है। नम्रता के बिना ना कोई भजन में प्राप्ति नहीं होती है, आध्यात्मिक प्राप्ति, दिव्य प्राप्ति ना भजन में नम्रता के बिना नहीं हो सकती है। तो ये शिव जी से हम प्रेरणा ले सकते हैं और मानसरोवर में राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें वो प्रेरणा दें, हमें कृपा करें हमारे ऊपर, कि हम उतने आतुर नहीं हैं लेकिन हमें वो आतुरता भी दें। रूपा जी बताते हैं, अगर हम ईगर, इफ़ यू आर नॉट ईगर देन प्रे फॉर ईगरनेस, इफ यू आर नॉट एंथुजियास्टिक इन भक्ति प्रे फॉर एंथुजियाज्म इन भक्ति, इफ यू आर नॉट सिंसियर इन भक्ति प्रे फॉर सिंसियरिटी इन भक्ति। जो भी नहीं है कम से कम उसको पहचानो कि हमारे अंदर वो नहीं है, और उसके लिए मांग करो, उसके लिए भिक्षा मांगो। सॉरी मैं आपको एकदम ब्लंट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, ब्रज में ना कितने भी बड़े होंगे हम लोग ना, तो भी भिक्षुक बन के आना चाहिए, वे हम टू कम हियर एज अ बेगर, क्योंकि यहाँ का जो धन है ना उसको पाने की हमारी कोई योग्यता नहीं है। हो सकता है दुनिया का धन पाने की हमारे में बहुत योग्यता है, बहुत सारी हमारी क्वालिफिकेशन है, हम लोग बैठे बैठे भी कमा सकते हैं दुनिया का धन, लेकिन दुनिया का धन जो है वो उसमें से एक कौड़ी भी हम साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। तो वो धन हमको प्राप्त करना चाहिए जो हमारे साथ में जा सकता है, और वो है आत्मा के स्तर वाला धन, जिसमें भक्ति होती है, प्रेम होता है भगवान के लिए, और वो प्राप्त करने की जगह है, वो उसका भंडार है सब यहाँ पर। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है, लालसा, हाँ लवलीय यानी कि ईगरनेस, नम्रता और उत्कट तीव्र भावना होनी चाहिए, आई वॉन्ट। तो वो प्रार्थना करने से फिर मिल जाता है। जैसे शिव जी को कैसे समय लगा क्या, तुरंत डुबकी लगाते ही गोपी शरीर प्राप्त हो गया। तो यहाँ की महिमा वो है। तीसरी कहानी यहाँ की ऐसी है कि वो वृंदावन में एक मंदिर है राधा वल्लभ जी का, तो राधा वल्लभ जी की सेवा जो है वो आत्मदेव ब्राह्मण के पास थी। तो राधा वल्लभ जी ने उनको एक बार दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि मेरे बंसी के अवतार जो हैं वो अभी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हो चुका है और अभी वृंदावन में आने वाले हैं, वो मेरे बंसी के अवतार हैं। उनका नाम था श्री हित हरिवंश। तो वो यथावकाश जब वृंदावन में आए तो उनका मिलन हुआ एक जगह पर, दोनों ने दिल की भावना से उनको पहचाना और बहुत सुंदर आलिंगन दिया और अश्रुओं से एक दूसरे को नहाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले कि निद्रा आपके ऊपर हावी हो जाए सोचा आपको जगा दें, क्योंकि तीसरी कहानी अभी आरंभ हो रही है, दो हो गई। तो वो आत्मदेव ब्राह्मण राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे, राधा वल्लभ जी की आज्ञा अनुसार राधा वल्लभ जी के विग्रह को उन्होंने हित हरिवंश को दे दिया भेंट में, अपनी कन्या को भी विवाह में भेंट दिया और राधा वल्लभ जी का विग्रह भी भेंट दिया। वो हमारा जो भक्ति वेदांत हॉस्पिस है ना, जहाँ पर हमारा वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में अस्पताल है, उसके 2 मिनट आगे वो स्थान है जहाँ पर हित हरिवंश बंसी के अवतार रहे राधा वल्लभ जी को लेकर। और वहाँ पर ऐसा एक बड़ा सुंदर पेड़ है, तो अभी नहीं रहा लेकिन वो पेड़ वहाँ पर उसका स्थान है। उसमें ना इतनी बड़ी जगह थी, 3 जगह थी उसके अंदर, एक जगह के अंदर स्वामी जी खुद रहते थे, एक जगह में विग्रह को रखा था और एक जगह पर उनके श्रृंगार के सामान रखा था, पैराफेरनेलिया है ना, इतने बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था वहाँ पर, जैसे कि इट्स अ बिग फ्लैट इनसाइड अपार्टमेंट। तो वैसे वो रहते थे और वैसे भजन करते थे, विरक्त भजन करते थे। तो उनकी इतनी ख्याति हो गई कि वहाँ पर जो वो थे ना एनिमी एनिमल्स, जैसे कि हिरण और सिंह है, हिरण और बाघ है, तो वो शत्रु है ना, वो तो सब मित्र हो गए उधर, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी को खा नहीं रहा है, ऐसा एकदम पूरा निर्विकार जगह हो गई, वो त्रिगुण से परे हो गई जगह, सब प्राणी मात्र मित्र हो गए, तो ख्याति बढ़ गई ना कि ऐसे कोई बाबा आए वहां पर, विरक्त बाबा जो जिनके होने से ही सब जगह पर मैत्री का प्रभाव हो रहा है। तो एक डाकू था, उसका नाम था नरवाहन। क्या नाम था उसका? तो नरवाहन डाकू ऐसा मशहूर डाकू था, मतलब कुप्रसिद्ध, कुख्यात। अकेले आकर लोगों को मारता था वो, और लोगों को लूट कर पूरा निर्वस्त्र करके पूरा धन छीन के उनको पेड़ पर उल्टा टांग के चला था। उसके सरदार भी ऐसे ही थे, बहुत शक्तिशाली थे, और पूरे वृंदावन की जितनी भूमि थी उसने अपने बल से अपनी बना ली थी। तो उसके कान पे इसकी ख्याति आ गई, क्योंकि वे बाबा आ गए वृंदावन में हमारी जगह पर, और उनकी ख्याति हमारे से बढ़ बढ़ रही है। तो वो बोले, अरे मैं खत्म करता हूँ उनको, और वहाँ से घोड़ा में बैठकर राजा का मुकुट वुकुट पहनकर, क्योंकि सरदारों का हरे कृष्णा राजा थे ना वो, तो वहाँ पर वो रुके थे। तो राजा का वस्त्र पहनकर, अलंकार पहनकर, घोड़े में बैठकर, खड़ा पहन मतलब वो मुजड़ी पहनकर, तलवार लेकर, बोले भी साधु का वध करता हूँ। जब वृंदावन ने प्रवेश किया तो उनको लगा, करे साधु को मारने के लिए तलवार की जरूरत क्या है, एक हाथ ही काफ़ी है। तलवार को फेंक दिया, घोड़ा भी छोड़ दिया, और जमुना जी की रेती पे चलने लगे, ऐसे क्रोध में आ रहे हैं, भाई कौन है साधु वो। फिर वो रेती सब मुजड़ी में घुस गई, तो रेती मोचड़ी भी निकाल के फेंक दिया। फिर वो आगे आगे तो गर्मी लगने लगी, तो ऐसा पूरा कपड़ा निकाल के सब फेंक दिया, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्रोध ऐसा छाया हुआ है ना। एंड में जब वो मदन टेर जगह है, मदन टेर जहाँ पर हम वो उनका निवास है, तो वहाँ पहुँचे ना तो केवल कोपिन में थे, बाकी सब वस्त्र वस्त्र सब निकाल दिए, और आँख में इतना क्रोध लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही पता चला कि यहीं पर रहते हैं वो, तो वहाँ पर गए जब ही, तो घूर घूर कर लाल लाल आँखों से, जैसे खा जाएगा पूरा उनको, ऐसे उनको देखने लगे। तो वो हित हरिवंशी महाराज वहाँ भजन कर रहे थे, तो ये क्रोध से भरा हुआ आदमी कोपिन पर ऐसे प्रवेश किया, तो उन्होंने कहा, अरे नरवाहन प्रभु निहार, मुझे क्यों देख रहे हो घूर घूर के, प्रभु को देखो। तो नरवान जैसे क्रोध से इनको दिख रहा था, किसको दिखा रहे हैं, तो उनको देखा। जैसे राधा वल्लभ जी को देखा ना, ऐसा हृदय पिघल गया उनका, ऐसा हृदय पिघल गया उसी क्षण पे, पूरा क्रोध बोध समाप्त होकर पूरा भक्ति जागृत हो गई हृदय के अंदर, ऐसा तत्क्षण परिवर्तन हो गया पूरा, और आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। आमूलाग्र मतलब क्या? आमूल अग्र, अग्र से लेके मूल तक सारा परिवर्तन हो गया, कुछ बचा ही नहीं, द्वेष क्रोध और बाकी सब जो खूंखारता थी सब खत्म हो गई, क्रौर्य सब खत्म। और ऐसे देखते ही चरणों में गिर गया महाराज जी के, महाराज क्षमा करना, मैं तो मारने के लिए आया था आपको, पता नहीं क्या हुआ था मुझे, आज आपकी कृपा से ही ठाकुर के दर्शन हुए, वो सारा जो नकारात्मक चीज़ें थी वो समाप्त हो गई, आपकी कृपा से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। हम लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन हो सकता है? कृपा होनी चाहिए संत की। संत ने कहा प्रभु निहार, तो कृपा हो गई तुरंत, संत की इच्छा से पूरा परिवर्तन हो गया, डाकू का परिवर्तन हो गया। तो हम तो डाकू तो नहीं, कम से कम। तो चरणों में गिर गए, वही रह गए नरवाहन, तुरंत अनुग्रह ग्रहण के लिए उनका शिष्य बने, वहीं पर सब कुछ डकैती छोड़ दिया और वे भजन करने लगे। तो सरदारों को लगा वहां पर कि डाकू अपना जंगल में गया था, कोई शेर वेर खा गया उसको तो कोई योग्य देखा व्यक्ति उसको राजा बना दिया, और अपना काम चालू रखा उन्होंने डकैती करने का। अरे यहाँ पर रह गए जंगल में, साधु के साथ भोजन करने लगे। तो वन में भटकते थे वो, कोई भूखा प्यासा, कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, तो उसकी रक्षा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसके सरदार थे ना वो, जो उनको लगा कि सरदार हमारे मर गए, तो दूसरा सरदार बन गया। तो वो कुछ लोग आ गए, उन्होंने किसी धनी आदमी को लूटा, वैसे ही सब कुछ लेकर उसको पेड़ पे उल्टा टांग के चले गए वो। तो उल्टा टंगा वो आदमी जो पुकार रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक बुढ़िया आई, तो बुढ़िया ने कहा, अरे ऐसे बचाओ बचाओ मत बोलो, आप नरवान नरवान बोलो, तो नरवान आएगा आपको बचाएगा। तो नरवान नरवान बोलना शुरू किया, तो नरवान आया आवाज़ की ओर, कौन तकलीफ में है, देखा तो जिस प्रकार से उसको उल्टा टंग के रखा है, समझ गया कि हमारे सरदारों का काम है, तुरंत उसको छुड़ाया उसने, वो सीधे उसको लेकर अपना जहाँ था ना रहने की जगह, जहाँ पर अड्डा था, दरबार बोलो कुछ भी बोलो, वहाँ पर ले गया उसको। तो वो सब एकदम आश्चर्य में आ गए, सरदार जीवित है, और आ गए पूरे रुबाब से बोल रहे, इसका जो भी लूटा हुआ है सब वापस कर दो। सब वापस कर दिया उसका सामान, बोले इसको राजवस्त्र पहनाओ, सब राजवस्त्र पहना दिया, बोले पालकी लेके आओ, पालकी लेके आए, बोले उसको पालकी बिठा के घर में छोड़ के आओ पूरे सम्मान के साथ में उसको घर पहुँचाया। फिर वापस वृंदावन में आए, बाबा के पास रहने लगे। एक दिन ऐसा लगा कि बाबा मैंने तो पूरा जोर जबरदस्ती डकैती करके पूरा ये जमीन अपना बना लिया था, अभी मुझे कोई इसमें आसक्ति नहीं बची, ये सब क्या कहते हैं ना, वो पाप का सब हिस्सा पाप का है, यानी कि मेरा नहीं है, मैंने ऊपर अपना रोब जमा कर आधिपत्य जमाया है, मैं नहीं चाहता अभी कि इसको अपने पास रखूं, मैं आपको सबको ये देना चाहता हूं आपकी सेवा में। तो मैं अभी वो हमारा जो अभी आप रात को रुकेंगे ना, वो हमारा हॉस्पिस जो है ना हॉस्पिटल, उसके 2 मिनट आगे ये जगह है, वो जमुना के किनारे पर है और जमुना के पार ये जगह है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं अभी। उन्होंने कहा मैं वहाँ से एक बाण मारूँगा और मेरा बाण जहाँ तक पहुँचेगा ना वो सारी भूमि आपको दान कर दूंगा। तो मदन टेर पे खड़े होकर नरवाहन जी ने जो बाण मारा है वो पूरा यमुना जी को पार करके यहाँ तक आया है। तो ये सारी भूमि उन्होंने हित हरिवंश को दान में दे दी। तो ये मानसरोवर भी उन्हीं के एरिया में था, ये भी राधा वल्लभ जी के हो गया। तो वृंदावन की जितनी भूमि है वो राधा वल्लभ जी की हो गई, फिर उन्होंने अपने शिष्यों में बांटी है और बहुत लोगों को उसमें सेवा में दे दिया। उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े खूंखार डाकू का भी परिवर्तन हुआ संत की कृपा से, इसलिए इस जगह को राधा रानी कहते हैं। वैसे तो मानसरोवर नाम है लेकिन ब्रजवासी उनको सबको राधा रानी बोलते हैं, क्योंकि तो राधा रानी का उसमें शिला में मूर्ति है बहुत सुंदर, राधा रानी का निवास स्थान है ये। राधा रानी ने यहाँ पर आकर बहुत ही उत्कट सर्वोत्कृष्ट प्रेम की भावना प्रकट की है, तो राधा रानी का वहाँ पर मंदिर है और यहीं पर बहुत सारी लीलाएँ हुई है। राधा रानी जब रूठ कर बैठी थी तब श्री कृष्ण आते हैं गोपी बनकर, और गोपी बनकर ना राधा रानी का विग्रह बनाते हैं, वो गोपी बनकर राधा रानी का विग्रह बनाकर राधा रानी के विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भोजन लगा भोग लगाते हैं, उनको गीत गाते हैं, मंगला आरती करते हैं और सुंदर सुंदर गीत गाकर नृत्य करते हैं, राधा रानी को रुझाते हैं। तो रूठी हुई राधा रानी को लेके आते हैं गोपियाँ, कहते देखो कोई सुंदर गोपी आई है यहाँ पर, वो तुम्हारे विग्रह की पूजा कर रही है, कितना प्रेम है उनके अंदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे विग्रह को देखकर ही वो भाव विभोर हो रही है। तो राधा रानी देखने को आती है तो समझ जाती है कि हमको रिझाने के लिए श्याम सुंदर जी जो है गोपी बनकर आए हैं, तो उनका जो है मान जो है ना वो समाप्त हो जाता है। एक बार यहाँ पर मानसरोवर पे राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए थे और उनकी छाया गिरी हुई थी राधा रानी की कृष्ण के वक्षस्थल पर, तो मैं भी बैठा हुआ ऐसे, कोई मेरे बाजू में बैठा है तो क्या होगा, मेरी छाया जो है उसके छाती पर गिरेगी ना अगर मेरे पास में बैठा है तो राधा रानी की छाया सुंदर श्रृंगार किया है ना वो पल्लू वल्लू लेके, तो छाया भी ऐसे लग रहा है लड़की की है, तो वो छाया जो है उनकी वो कृष्ण के वक्षस्थल पर पड़ी हुई है। तो रूठ गई, वो कहते मेरे होते हुए किसी के और को गले लगा रहे हो, उन्होंने समझाया बहुत, आप ही हो, बहुत देर तक नहीं मानी हो, भाव भी बढ़ता ऐसे होते, आप बोले इतनी क्या मूर्खता होती है क्या, इतना समझ में तो आता है ना सूरज की किरण पड़ रही है, लेकिन वो लीला में ऐसा नहीं होता है, लीला के भाव को समझना बहुत मुश्किल है, वो कॉमन चीज़ें बच्चा भी समझता है वो लीला में अद्भुत तरीके से ना समझ हो जाता है। तो कृष्ण ने बहुत कोशिश किया, रोने लगी वो, परेशान हो गई कि तुम मेरे होते हुए किसी को गले कैसे लगा सकते हो। फिर कृष्ण ने बोला अभी तुम हिल के दिखाओ मुझे, फिर देखो छाया कैसे हिलती है। तो फिर वो हिली तो समझा कह रही वो छाया भी हिल रही है तो समझ में आया कि तो मेरी ही छाया और कोई नहीं है। ऐसे सुंदर चटपटी लीलाएँ यहाँ पर हुई है। राधा रानी ऐसे नहीं कि एक ही बार आकर उठ कर बैठी, यहाँ पर अनंत बार आकर उठ कर बैठती है और कृष्ण अनंत बार अनंत तरीके से उनको मनाते हैं। उनका मनाना जो है वो प्रेम को बढ़ाने वाला है, उनका रूठना भी प्रेम को बढ़ाने वाला है, हमारे जैसा नहीं है। हम तो केवल यहाँ पर भिक्षा ही मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं, भिक्षा मांगिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, वो भाव प्राप्त हो, वो आंसू प्राप्त हो, कभी वो एक निकलेंगे तो कृष्ण को आनंद आएगा, उसमें रिझेंगे कृष्ण भगवान। यही प्रार्थना के साथ में हम अपने कथा को विश्राम देते हैं। सब लोग अभी जल को आचमन कीजिए, बहुत ही कैसे राधा कुंड का जल कैसा है ना, द्रव रूप प्रेम है। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि राधा रानी का कुंड जो है वो राधा कुंड, वो जल जल नहीं है, वो राधा रानी का द्रव रूप अस्तित्व है, वो प्रेम का द्रव के रूप में प्रकट हो गया वो वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर प्रभुपाद जी ने उनको किसी को स्नान करने को मना कर दिया था कि इतने उत्कट जल में कोई सामान्य जन जो है मजा करने के लिए स्नान नहीं कर सकते, केवल आचमन करने के लिए उन्होंने परमिशन दिया था। उसी तरह से ये भी कुंड है, बहुत उत्कट कुंड है, कोई जल क्रीड़ा का केंद्र नहीं, जल क्रीड़ा का केंद्र उनके लिए, हमारे लिए नहीं, हम तो केवल जल को छूकर उसको प्रणाम कर सकते हैं, सर पे छिड़का कर सकते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदवाय नमः आचमन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, रो सकते हैं, यही हमारी योग्यता है। तो इतनी बड़ी कृपा आपके लिए उपलब्ध है, आप आचमन कर लो, प्रेम से पुकार लो, राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे, प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधा रानी जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधा रानी जय 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 श्री राधे, प्रेम से पुकारो, जय 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 श्री राधा रानी जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रे, जय जय श्री राधे श्याम।